भगवान बुद्ध की मंगल वाणी कैसे भारत के अध्यात्म शरीर की रग रग में समा गई। मंगल हुआ, धर्म की वाणी तो धर्म की वाणी है। हमने ना समझे में सांप्रदायिक विद्वेष को लेकर के उसे दूर किया, पर वाणी तो वाणी है, समा गई। धर्म तो धर्म है, धर्म पराया नहीं होता, धर्म तो सबका होता है। जो सचमुच उस रास्ते पर चलता है वो पंडित हो गया। पंडित हो गया माने सज्जन हो गया, संत हो गया। अब उसकी वाणी भी मंगल की वाणी ही होगी। हर संत की वाणी मंगल की वाणी है, लेकिन जिसने पढ़ा लिखा तो, लेकिन जीवन में धर्म को उतारा नहीं और अपने आप को एक पंडित होने का गर्व अपने सिर पर चढ़ा लिया, ऐसा व्यक्ति सज्जन नहीं है, संत नहीं है। भले अपने आप को पंडित कहता है, लोग भी भले उसे पंडित कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सारे जीवन भर वाद विवाद में ही लगा रहता है। लोगों को ये प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना पंडित हूँ, मैं कितना धर्म का जानने वाला हूँ। तो पंडित वाद बदंते झूठा, ये इस तरह के पंडित जिनके जीवन में धर्म नहीं उतरा है मिथ्या वाद विवाद करते हैं, मिथ्या वाद विवाद करते हैं, धर्म की सही बात को उलझाते हैं, अपनी हानि करते हैं, औरों की हानि करते हैं। जो व्यक्ति सही माने में धर्म समझ गया और सही माने में धर्म अपने जीवन में उतारने लगा, उसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं होता, मत मतांतरों से कोई लेन देन नहीं होता। जो मत मतांतर में उलझ गया, ये मेरा संप्रदाय है, ये मेरा मत, ये मेरी दार्शनिक मान्यता, ये तेरी दार्शनिक मान्यता, कहाँ समझेगा धर्म के तत्व को वो व्यक्ति कैसे समझेगा। तो ठीक ही कहा किसी संत ने कि मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। जो तत्ववादी है वो तत्व को जानता है, धर्म के सार को जानता है, उसकी वाणी की बात को वो समझ ही नहीं सकता, वो तो अपने मतवाद में उलझा है। मेरा मत ठीक, तेरा मत गलत, मेरा संप्रदाय सही, तेरा संप्रदाय गलत, मेरी दार्शनिक मान्यता सही, तेरी दार्शनिक मान्यता, सारा जीवन बिता देता है और पोथी पढ़ पढ़ करके ऐसा अभिमान जगाता है, मेरा जैसा ज्ञानी कौन। अभिमान ही अभिमान, पढ़ पढ़ पोथी भा अभिमानी, पढ़ पढ़ पोथी भा अभिमानी, जुगति और सब वृथा बखानी। तरह तरह की युक्तियां, वृथा युक्तियां, सारा जीवन बिता देता है इसमें। जाना नहीं ना, धर्म को समझा नहीं, वाद विवाद करता है, लोगों के सामने ये प्रदर्शन करने की कोशिश करता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कौन, देखो मैं धर्म को इतना गहराई से समझने वाला, मैं ऐसे धर्म के व्याख्यान देने वाला, मैं धर्म के तत्व को ऐसे समझाने वाला। अरे तत्व समझा ही नहीं, केवल बोलता है, जीवन में उतरा नहीं। जो ज़्यादा बोलता है अंदर से थोथा है, बहुत बार ऐसे होता है, थोथा तना, थोथा चना बाजे घना, थोथा है ना, तो लोगों को बताना चाहता है कि मैं थोथा नहीं हूं, तो थोथा चना बाजे घना। भगवान ने एक उदाहरण देकर के समझाया, एक पहाड़ी नदी पहाड़ पर से उतरती है, छोटी है अभी, पहाड़ पर से उतरती है तो कितना शोर करती है, दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है, नदी बहकर जा रही है। पहाड़ से नीचे उतरी तो इधर का जल उधर का जल और बहुत से नदी नाले उससे मिल गए तो विशाल हो गई। अब वो हल्ला गुल्ला बंद, वो आवाज़ बंद, बड़ी शांति के साथ बहती चली जा रही है। जो छोटा है सचमुच बड़ा नहीं है, वो आवाज़ करता है। जो सचमुच बड़ा हो गया उसको आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसको विवाद करने की ज़रूरत नहीं, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं बड़ा हूँ। बड़ा है ना, उसका जीवन कहता है, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टका है मोल, कहने की जरूरत नहीं, अपने आप लोग समझेंगे। जो संत है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। भारत में कितने संत हुए, पढ़े लिखे नहीं। एक संत कहता है, मस्य कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। कलम गही नहीं हाथ, कागज नहीं छुआ लेकिन कलम हाथ में नहीं ली, फिर भी अंदर से ज्ञानी है, अंदर से ज्ञानी है। तो पढ़ लिख करके ही ज्ञानी होगा, ज्ञान जीवन में उतरे तो आदमी बदल गया, संत हो गया। ऐसा व्यक्ति यही कहेगा जब कोई उससे वाद विवाद करेगा, तो कहता है, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। उससे कोई विवाद करने आता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। अरे तू धर्म ग्रंथों की बात करता है, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। धर्म का अनुभव किया है, धर्म जीवन में उतरा है। जिसके जीवन में धर्म उतरेगा और वो अपने अनुभव की बात कहेगा, उलझाने वाली नहीं होगी। तो कहता है, मैं कहता सुलझा वन वाली, मैं कहता सुलझा वन वाली, तू राखे उलझाय रे, तू राखे उलझाय रे। ऐसे वाद विवादी पंडित उलझाते ही हैं, धर्म के नाम पर वाद विवाद करते हुए, झगड़े करते हुए कितने हानि करते हैं लोगों की, कितने हानि करते हैं। एक नशा होता है। दुर्भाग्य से भारत में एक और नशा भी, एक तो ये कि मैं बड़ा अज्ञानी, मैं इतने शास्त्रों को जानने वाला, मैं इतने शास्त्रों की व्याख्या करने वाला, मेरे जैसा ज्ञानी कौन हो। जीवन में नहीं उतरा बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्ञानी। ऐसे ही एक और बीमारी भारत में चली, आज भी चल रही है। उन दिनों बहुत बहुत ऊंचाई पर थी एक घटना। अम्बस्ट नाम का एक युवक, ब्राह्मण युवक, नशा उसे, दो दो नशे। एक तो माने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने गुरु पोषकर साथी के यहाँ रह करके इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं इतना पंडित, मैं इतना ज्ञानी, और फिर मैं ब्राह्मण और सबसे ऊंचा, दो दो अभिमान सिर पर लिए हुए पहुंचा भगवान बुद्ध के पास। अब उसको नशा है, अपना अभिमान है। तो ऐसे उनसे बातचीत करता है, अब शब्दों में, अपमान भरे शब्दों में, कहीं सम्मान का नामो निशान नहीं है, अहंकार है। मैं ब्राह्मण हूं और तुम लोग शाक्य लोग, जो शाक्य क्षत्रिय हैं, हमसे नीचे हैं, हम ऊंचे हैं। इसी नशे में बात करता है। भगवान उसे प्यार से समझाते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसे समझाते हैं। धर्म विद्या है, भीतर का ज्ञान है जो वेदनाओं से जागता है, संवेदनाओं से जागता है, अनुभूतियों से जागता है, विद्या है। वो विद्या तभी विद्या है जब आचरण पर उतरे। तो विद्या और आचरण का सीख सिखाता है उन्हें। वो लौट करके अपने गुरु के पास आता है, पोषकर साथी, उन दिनों का बड़ा प्रसिद्ध विद्वान, बहुत शिष्य उसके, और कौशल देश का राजपुरोहित, बड़ा सम्माननीय व्यक्ति। जब उसने आकर के सारी घटना समझाई, मैं ऐसे बुद्ध के पास गया, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसे कहा, अरे बड़ा दुख हुआ उसे। अरे धिक्कार है हमारी पंडिताई को, धिक्कार है हमारे इस जात पात को, धिक्कार है हमारे पढ़ने लिखने को, व्यवहार करना नहीं आया, संतों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए ये नहीं सीखा, बड़ा दुख हुआ उसे। तो गया भगवान बुद्ध के पास, अपने शिष्य की ओर से उनसे क्षमा मांगने गया। और फिर भगवान की शिक्षा को सुनते सुनते, समझते समझते, धारण करते करते महान संत हो गया। केवल ज्ञानी पंडित ही नहीं, संत हो गया। कोई किसी की निंदा करता है तो समझना चाहिए कि निंदा किस भावना से कर रहा है। कभी कभी कोई गलत बात बताता हो तो हमें लगता है देखो हमारी निंदा कर रहा है। भगवान ने कहा कि कोई तुम्हारी निंदा करता हो तो ऐसे समझो कि कोई बहुत गड़ा हुआ खजाना जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, वो दिखा रहा है। माने तेरे भीतर सद्गुण भी भरे पड़े हैं लेकिन तू उनका उपयोग नहीं करता, दुर्गुण ही दुर्गुण। अरे उनको दूर कर, उस दुर्गुण के पर्दे को दूर कर तो खजाना भरा पड़ा तेरे भीतर, तो अपना गड़ा हुआ खजाना दिखाने वाला है। यही बात आगे के संतों ने भी कही, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। निंदक को निंदक मत मानो, समझो कि उसने कोई गलती बताई है, वो गलती नहीं है तो उसके प्रति करुणा मंगल भावना, गलती है तो उसको धन्यवाद दो और जो अपनी गलती है उसको सुधारो। पंडित है, सचमुच पंडित है, सचमुच ज्ञानी है, सचमुच सज्जन है, सचमुच संत है, तो जो काम करेगा औरों के भले के लिए ही करेगा, भले के लिए करेगा, भले अपनी थोड़ी हानि भी होती हो तो चिंता नहीं। चंदन को देखा, चंदन की लकड़ी काटी जाती है, पीसी जाती है, पर क्या देती है बदले में? सुगंध देती है। दीपक जलता है, प्रकाश देता है, जलता है, खुद जल रहा है, प्रकाश देता है। अगरबत्ती जलती है, सारे वायुमंडल को सौरभ से भर देती है, सुगंधी से भर देती है। जो भी सज्जन होगा वो औरों के भले के लिए त्याग भी करना होगा तो करेगा। वृक्ष है, कितनी कड़ी धूप छह रहा है लेकिन जो उसके तले आ गया उसको शीतल छांह देता है। स्वयं गर्मी छह रहा है और शीतल छांह दे रहा है। तरुवर है, तरुवर के लिए कहा गया, तरुवर सज्जन सदृश सदा, फूले फले परहेत। तरुवर तो तरुवर है, वृक्ष है, फल वाला वृक्ष है, तो औरों के लिए ही फलता है, खुद नहीं खाता उस फल को। तरुवर सज्जन सदृश सदा, फूले फले परहेत, इतते ये पाहन हने और उतते वे फल देत। पत्थर मारते हैं उसे, पेड़ को पत्थर मारते हैं और वो अपना पका पकाया फल नीचे देता है। ये सज्जन की सज्जनता। अपने यहां एक ऐतिहासिक घटना, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह बहुत वीर, बहुत दानवीर, बहुत धर्मवीर, बहुत समझदार। अपने राज्य में प्रजा कैसे रहती है, सुख से रहती है कि नहीं है, बार बार भेष बदल करके देखने जाया करता था, कहीं प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, मेरे राज में मेरी प्रजा जो मेरी संतान की तरह है वो कहीं दुखी तो नहीं। तो गया एक बार, कुछ 5-7 दरबारी लोग साथ थे, एक बगीचे में से गुजर रहा था, इतने में एक पत्थर आके लगा, उसके चेहरे पर पत्थर लगा और थोड़ा सा खून भी आ गया। जो दरबारी थे आसपास, अंगरक्षक थे, अरे राजा को किसी ने पत्थर मारा, भागे इधर उधर पकड़ने के लिए, किसने पत्थर मारा। इधर उधर गए तो देखते हैं कि एक किशोर, कम उम्र का लड़का पत्थर फेंक रहा है, पेड़ पर पत्थर फेंक रहा है, पकड़ रहा है उसे, इसकी वजह से हमारा राजा आहत हुआ, इसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, महाराज के शरीर से खून निकाला इसने। महाराज को धर्म की यह वाणी, धर्म की यह वाणी याद आती है, इतते वे पाहन हने और उतते वे फल दे। अरे बेचारा भूखा बालक भूखा बालक पत्थर मार करके पेड़ से फल मांगता था, पेड़ उसे फल देता है। एक निर्जीव निष्प्राण पेड़ उसको पत्थर मारे तो बदले में फल देता है, और मैं तो एक समझदार राजा, मेरे देश का एक भूखा बालक, मैं उसे दंड दूं? उसे इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। वो फल दे सकता है, मैं पुरस्कार क्यों नहीं दे सकता? पुरस्कार देता है, उसे धनी बनाता है। ये धर्म, इतते ये पाहन हने उतते वे फल दे। सज्जन होगा तो भला ही करेगा, उसको स्वयं कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट उठाना पड़े, भला ही करेगा। कोई व्यक्ति सज्जन की संगत में आ जाता है तो भलाई के रास्ते पड़ जाता है, और दुर्जन के संगत में आ जाता है तो बुराई के रास्ते में पड़ जाता है। पुराने भारत की एक घटना, पांचाल देश का राजा अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए निकला, देखा एक बहुत सुंदर हिरण दौड़ रहा है, उसके पीछे लग गया। उसका घोड़ा भी बहुत तेज और वो हिरण भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा, बाकी लोग पीछे छूट गए। अभी राजा उसके पीछे लगा, पीछे लगा, वो हिरण तो नहीं मिला, लेकिन ये थक के चूर चूर हो गया। बहुत दूर जाकर के एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वहाँ पहुँचा तो देखा एक तालाब है बगल में। थका हुआ था तो घोड़े से उतर के थोड़ी देर लेट गया, थोड़ा विश्राम कर लें। वो हिरण तो पता नहीं कहाँ गया, शिकार निकल गया हाथ से, ठीक है विश्राम कर लें, लेट गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, एक तोते की आवाज़ सुनाई दी। तोता कहता, पकड़ लो, अरे राहगीर आया है, इसको पकड़ लो, इसको मार दो, इसका धन लूट लो। एक बार सुना, दो बार सुना, किस तरह की आवाज़ है। घोड़े पर सवार होकर चल दिया, पहाड़ी के नीचे आया तो मुनियों का एक आश्रम था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही एक और तोते की आवाज़ सुनाई देती है, आइए आइए हमारे आश्रम में आइए, ये मुनियों का आश्रम है, यहाँ आकर के आपको विश्राम मिलेगा, यहाँ आपको धर्म का उपदेश मिलेगा, हमारे संतों की वाणी सुनिए। ये कैसी आवाज़ और वो कैसी आवाज़? तो जो बड़ा मुनि था वहाँ का, वो समझाता है कि ये दोनों दोनों जो सुगे हैं, दोनों तोते हैं, जुड़वा हैं, अपने माँ के पेड़ से एक साथ जन्मे। दूर किसी पेड़ पर जब ये छोटे थे तो माँ चुग्गा लाने के लिए गई, तो ये दोनों ने सोचा कि हम भी तो उड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं उड़ सकते, जरा उड़ करके देखें। दोनों घोंसले छोड़ के उड़े और आंधी का झोंका ऐसा आया कि एक यहाँ पड़ा और एक वहाँ पड़ा। तो एक तो ऐसा पड़ा कि जहाँ पर डाकुओं का गाँव था वहाँ ऐसी बात होती है, लूट लो, मार लो, ठग लो, इसका धन लूट लो, ये राहगीर आया है इसको लूट लो, यही बातें सुनता था, यही बातें वो बोलने लगा। और दूसरा हमारे इस आश्रम में आकर के पड़ा, हमने उसे पाला, तो यहाँ तो संतों की बात है, संतों की बात करता है वो भी। अरे संगत के कारण, जैसी संगत वैसा ही स्वभाव, संगत जैसी होगी उसी तरह का आदमी बनेगा, बुरी संगत से बुरा ही बनेगा, अच्छा बन नहीं सकता, अच्छी संगत से अच्छा ही बनेगा, बुरा बन नहीं सकता। भगवान बुद्ध की यह वाणी जो सारे भारत के अध्यात्म में समा गई, खूब फैले, लोग खूब लाभ लें, सही माने में अपना मंगल साध लें, अमंगल से दूर हों, दुर्जनों की संगत से दूर हों, सज्जनों की संगत में लगें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, मुक्ति हो।